थी। आदरणीय करुणा भाई जी को हम एक हाथ की ताली से सभा में स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई जी का संक्षिप्त परिचय। आप वर्तमान समय ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के अंदर आप सेक्रेटरी जनरल का पदभार संभाल रहे हैं। आपको 1960 में बाबा का दिव्य अनुभूति और दर्शन हुआ और बाबा के साक्षात्कार से अनुभव से संग में रहकर आपने ये धारणा किया कि दक्षिण भारत के अंदर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार करना है और उसके पश्चात से आपने अपनी मूल्यवान सेवाएं देते रहे। आप महासचिव बनकर संस्था के ग्लोबल प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही आप मुख्य रूप से मल्टीमीडिया व जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने शुरुआत में इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हुए बेंगलोर में HMT के अंतर्गत आपने अपनी लौकिक सेवाएं भी प्रदान की, परंतु बाद में आपने बेहद रूप से ईश्वरीय कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। वरिष्ठ दृष्टि के रूप में श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर आप हम सबको बेहद सेवाओं की ओर ले चलते हैं। आप बोर्ड मेंबर ऑफ REF के रूप में ऊंचे लक्ष्यों को भी पूर्ण कर रहे हैं। भारत में IT और ग्लोबल वीडियो सेवाओं के विस्तार द्वारा आप बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं। आप 16 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की प्रणाली का भी विकास करने के आप माध्यम बने हैं। मीडिया विंग के आप चेयरपर्सन की भूमिका द्वारा भी बेहद तकनीकी उत्थान द्वारा विश्व सेवा का विस्तार कर रहे हैं। चैनल्स के जगत में भी आपने पीस ऑफ माइंड चैनल्स, अवेकनिंग चैनल्स की शुभारंभ करने की प्रेरणा दी। वीडियो ऑडियो और प्रकाशनों द्वारा आपने सेवाओं का विस्तार किया। कन्नड़ में कई किताबों का प्रकाशन भी आपके द्वारा हुआ। पत्रिका ज्ञान विज्ञान को भी आपने लॉन्च कराया। परंतु इन सभी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ अनेक आत्माओं की, विश्व भर की आत्माओं की दुआएं लेते हुए आप सबके साथ आपकी जो ये यात्रा है बहुत ही विनम्रता और सरलता से भरी हुई ये जीवन यात्रा है। तो ऐसे बहुत बहुत श्रेष्ठ आदर्श के रूप में आदरणीय करुणा भाई जी से हम सुनेंगे। आपका विषय है जमा का खाता बनाने की विधि। आदरणीय करुणा भाई जी।
ओम शांति। जब हम ब्राह्मण भाई बहने आपस में मिलते हैं, क्या क्या बात करें, दुनिया में क्या हो रहा है, या हमारे सेंटर्स में क्या हो रहा है, या जब दो मिलते हैं जो किसी तीसरे के बारे में बात करें। तो मैं समझता हूं हम ब्राह्मण भाई बहने जब मिलते हैं तो अपने पुरुषार्थ के बारे में बात करते हैं तो उससे थोड़ा फायदा होगा ऐसा लगता है। ऐसा करें, जो कहते हैं कि भाई हाँ हम पुरुषार्थ के बारे में करें वो हाथ उठाए। थैंक यू थैंक यू। आज कुछ हम ऐसी बात पर अपना एक दो का अनुभव रखे, क्योंकि आप सबको भी ये होता होगा कि भाई आखिर मधुबन में बैठे हुए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या आपस में बात करते हैं। हम सबको ये पता है कि दुनियादारी का हिसाब किताब और दुनिया के बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, ये सब कुछ पता है सबको। परंतु जब से हम बाबा के बने हैं तब से हमारे कुछ अकाउंट खुला है। तो जब से बाबा के बने, एक है जमा करना, जो बाबा कहते हैं ना, हम यहां के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लोग तो यहां के लिए नहीं है भाई, ये तो आने वाले दुनिया के लिए है। तो कोई तो चाहिए आने वाले दुनिया के लिए भी, वो दुनिया को नहीं मालूम है, वो समझते हैं बस ये जो अभी चल रहा है ना वो यही है सब कुछ। पर हम यहां का सब कुछ देखते हुए करते हुए हम सबका दिल में यही आता है कि भाई आने वाली दुनिया के लिए कुछ करना है। हम बच्चों को ही करना है। बाबा ने कहा कि भाई मैं भी अकेला हूं तो आप बच्चों के साथ ही मुझे करना है। करण करावनहार बाबा को कहते हैं। वो क्या करता है कि वो हम बच्चों को रचना करता है। ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को रचता है। बाकी जो दुनिया का जो है ना कारोबार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बाबा ने तो कह दिया मैं तो ना सतयुग में आएगा ना मुझे कुछ वहां चाहिए। तो हम बच्चों को अपना बना करके आने वाले दुनिया के लिए बाबा हिसाब किताब समझाता है। नहीं तो हम लोग आज तक यही सोचते थे कि जैसे ही शरीर छोड़ेंगे वहां एक बैठा हुआ है किताब लेके, तो वो हमारा हिसाब किताब करेगा और वो बताएगा। तो कल वैसे ही मैं देख रहा था मोबाइल, उसमें किसी ने एक ऐसा बना के भेजा था, आदमी एक ही है तो दो रूप में दिखा रहा है। तो एक तो चित्रगुप्त का काम कर रहा है और वही आदमी सामने तो अभी शरीर छोड़ के उनके सामने आया है। आदमी फेस तो एक ही लग रहा था पर काम दो चल रहा था। तो वो पूछ रहा है कि भाई तुम तो अभी यहां आ गया है, तो बोला क्या मैं मर गया? तो सामने वाला बोलता है हाँ, देखो तुमको ये दो चीज तो मालूम नहीं है, कब कैसे जन्म लिया कहां लिया कुछ नहीं पता, जन्म तो ले लिया और अब शरीर छोड़ के आए हैं ये भी नहीं बताया तुमको। तो वो कहते हैं हाँ सही बात है। तो फिर उससे ये पूछता है कि तेरे लिए दो चॉइस है, एक है पुनर्जन्म, भाई शरीर छोड़ा है तो दूसरा जन्म लेगा, दूसरा है कहा मोक्ष है। तो वो हाथ जोड़ने लगा खुद ही कि नहीं नहीं मुझे एक और चांस दे दो, एक बार और जन्म दे दो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो उनका जन्म पत्री एक निकाल के बोलता है कि तुमने जो अभी कह रहे हो तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा सब कुछ है, देखो क्या क्या किया है तुमने। तो जब उनको दिखाया उनका कर्म तो वो कहता है नहीं इस बार डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा करूंगा, बहुत ये करूंगा वो करूंगा। तो उसको कुछ जन्मों के फाइल निकाल के इनको दिखाता है कि देखो इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, एक एक फाइल निकाल के दिखाता है, हर बार तुम यही बोला और जब गया तो वही काम किया, तो अभी भी वही कर रहे कह रहे हो तो तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लास्ट में उनको यही कहा कि भाई अब तुम जन्म लेने लायक नहीं हो, तुमको अभी मोक्ष ही मिलेगा। मुझे बाबा की याद आई, बाबा आप मुझे कहते थे, हम बच्चों को कहते थे कि मेहनत हम जो कर रहे हैं वो सत्युग त्रेता में आने के लिए, द्वापर में आने के लिए भी नहीं, सत्युग त्रेता में आने के लिए ही, सत्युग त्रेता की दुनिया रचने के लिए ही हम बच्चों को बाबा ने यूज किया है। आज जो आप सभी यहां जो बैठे हैं, बाबा की कृपा से बाबा ने चुने हुए बच्चे हैं जो आने वाली सृष्टि के लिए अपनी जीवन को बना रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं, बाबा कहते हैं कि भाई लास्ट सो फास्ट, तो जो समझते हैं लास्ट जो फास्ट है वो हाथ उठावे। बहुत अच्छा, तो जो ये समझते हैं हम इतने सालों से अमृत वेला उठ रहे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, इतनी सेवा किए हैं, तो उनका क्या होगा? जो अभी अभी आए और वो अभी अभी फास्ट आना है, तो अब तक जो बाबा के साथ तन मन धन से जो सब कुछ हम लोगों ने किया, तो वो क्या उनके पास अभी टाइम है? हम जितने बाबा के बच्चे पुराने जिन्होंने किया है, तो क्या अभी वो कर पाएंगे? अच्छा है, लास्ट सो फास्ट जरूर बने, परंतु जो हम बच्चे जब से बाबा मिले हैं तब से हम लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगा? बाबा ने कहा था कि जिन्होंने भी पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, 16 कला संपूर्ण बनने का प्रयास किए हैं, अष्ट शक्तियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है, तो जिन्होंने किया है वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई एक दिन में आ जाने वाला है, वो ऐसा बात तो है नहीं, मेहनत तो करना पड़ा है। तो इसीलिए बहुत अच्छा, लास्ट सो फास्ट जरूर बने, पर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्युग में जो आने वाले हैं वो 16 कला संपूर्ण हैं और त्रेता में जो आने वाले हैं वो 14 कला संपूर्ण हैं। तो हमारा जो अकाउंट बाबा ने अभी जो खोला है, चित्रगुप्त को साइड पे रख दिया बाबा ने, अब ये सब मेरे बच्चे हैं। चित्रगुप्त तब ले आता है जब बाबा पूछता है भाई इनका देखो, नहीं ये जो बच्चे हम हैं तो बाबा ने चुना हुआ बच्चे हैं, भाई इनकी हिसाब किताब बाबा के पास है। और जिन्होंने भी बाबा मम्मा को नहीं देखा है, दादियों को नहीं देखा है, वो सभी आप लोगों से मिलने के बाद ही हम लोग ऊपर जाएंगे, उससे पहले नहीं। ताली तो बजाओ। तो हम बच्चे जो है बाबा मम्मा दादियों के सामने सिर नीचे नहीं झुक के जाएंगे, मेरा तो अभी भी बाकी था, अभी भी कुछ रह गया था, अभी भी नहीं, हम बाबा के हैं, तो बाबा के सामने सैल्यूट मार के जाएंगे, सिर झुका के नहीं। तो आज हम लोगों को ये ध्यान थोड़ा सा रखला है कि हमारे दो अकाउंट होता है। विधि अकाउंट तो एक ही है, जो देवता बनना, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, लक्ष्य एक ही है, पर विधि दो है। एक है जो पुण्य कमाना, दुआएं कमाना, ब्लेसिंग्स कमाना, वो एक विधि है, उससे हमारा जमा खाता बढ़ रहा है। दूसरा, कुछ खर्चा भी हो रहा है। क्या खर्चा हो रहा है उसको बचाते हैं, तो जैसे बैंक में पैसा तो है आपका, पर उसमें खर्चा कम करते हैं तो वहां तो ज्यादा बचा रहता है। तो ये जो संगम में अभी हम अपना डे टू डे जो चल रहा है उसमें कुछ खर्चा भी कर रहे हैं हम लोग, उन खर्चों को बचाने से भी हमारा थोड़ा फायदा होता है। तो इस बात पर थोड़ा सा हम अभी निगाह रखें। वैसे आप सबको मालूम है जो हम ब्राह्मण हमारी मन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान होता है, तो कोई कोई मन को बंद करने की बात करते हैं, पर हम बच्चों को बाबा ने कभी नहीं कहा है कि भाई घोड़े को बांध के रखो, वो गोड़ काय का, तो मन तो चलेगा ना। तो सुबह हुआ, अभी आज सुबह से शाम तक क्या कर रहा, बुद्धि तो चलेगा, संकल्प तो चलेगा। हम देखते हैं कि भाई वैसे तो शांतिवन नाम है, बहुत शांति रहता है यहां, पर जब बाबा के बच्चे 20,000 आ जाए तो शांति है, पर लोग तो है, जहां भी देखे भाई बहने दिखते हैं सब जगह। ऐसे ही हम बच्चों को बाबा ने यही सिखाया है, तो किस तरह से अपने आप को मन में इसके लिए संकल्प नहीं चलना है, कौन क्या करता है, क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, प्रकृति तो अपना काम कर रहा है, युद्ध वाले युद्ध का काम कर रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। तीनों प्रकार का बाबा ने कहा था, ग्रह युद्ध भी होगा, प्रकृति का भी होगा और युद्ध का भी होगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ, अभी अभी एक आग के गोले ऊपर फट गया, वल्केनो कहते हैं उसको, आग का गोला, कहते 10,000 साल पहले वो हुआ था वहां, इतना बड़ा, जो कितने देशों के ऊपर तो बिल्कुल जैसे बादल जैसा काला एकदम, यहां भी उसका इफेक्ट 2-4 दिन दिखाई दिया, बादल नहीं था पर काला सा जैसा, बिल्कुल धूप था ही नहीं। तो ये प्रकृति अपना कार्य शुरू कर दिया है, बाबा ने कहा था, पूछ रहा है मैं छुट्टी दूं, पूछ रहा है मैं छुट्टी दूं, ऐसे अव्यक्त मूल्य आपको मिलेगा, परंतु अब बाबा नहीं पूछता है, बाबा ने छुट्टी दे दिया है उसको, वो अपना काम कर रहा है, प्रकृति भी अपना काम, ग्रह युद्ध का तो आप जानते ही है, उसकी वर्णन हम कर नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए अलग लोग हैं, वो काम के लिए, जो बाबा कहते हैं ना, अनेक अधर्मों का विनाश एक सद्धर्म की स्थापना, सद्धर्म की स्थापना हुई है या होना है, जो हुई है वो कहते हैं हाथ उठाओ। सत धर्म की स्थापना हुई है। मैं समझता हूं बाबा ने जो कार्य किया है, लगभग अभी 90 साल हो रहा है, तो ये स्वयं बाबा ने सद्धर्म की स्थापना का कार्य पूरा कर चुके हैं। कई बार अव्यक्त बाबा कहते थे, मेरे बच्चे बेटे हैं, उनमें मुझे दो, एक तो लाइट का और दूसरा आगे जाके बच्चे कैसे राजा महाराजा बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वो रूप बाबा को दिखाई देता था। मेरे सामने प्रिंस प्रिंसेस बच्चे बैठे हैं, बाबा कहते थे। तो इसीलिए सद्धर्म की स्थापना, जो लोग कहते हैं ना भारत विश्व गुरु बनेगा, आप सच्ची दिल से अपना बताओ, क्या आप लोग हैं या दुनिया में कोई और आएंगे जो गेरू कपड़ा पहने वाले? जो समझते हैं तो हम बच्चों द्वारा बाबा कराएंगे, वो हाथ उठाए। देखो तो सद्धर्म की स्थापना तो बाबा ने कर दिया है। 8,108, 16,108, 9,00,000 प्रकाशमणि दादी जी होते हुए ही पूरे हो गए थे, क्योंकि दादी जी ने एक दिन क्लास में कहा था कि दादी बाबा का संदेश देंगे, आपके पास आकर के देंगे, ये मीटिंग में बताया, सारे भारत के मुख्य भाई बहने बैठे थे उनके सामने, दादी आके बाबा का संदेश देंगे, पर कंडीशन है 1,00,000 की सभा होना चाहिए। तो आप सोचते होंगे कि आजकल 5,000-10,000 के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है, परंतु हमारे सरला दीदी गुजरात ने उठे, हिम्मत रखे और कहा दादी मैं करूंगी। और उन दिनों में भी 5,000-10,000 से ज्यादा कभी भी लोग नहीं आते थे किसी भी सभा में, परंतु दादी जी का संकल्प और पहला जो गुजरात में दादी जी ने किया, वहां 1,25,000 भाई बहने एकत्रित हो गए। उसके बाद तो सबने हिम्मत रखी और सब जगह में जहां जहां भी गई है, मैं कलकत्ता के भाई बहनों से बात कर रहा था तो विक्टोरिया ग्राउंड में 1,00,000 से ऊपर वहां भी थे। तो जितने भी बड़े शहर थे वहां दादी जी ने सभा रखी और लाखों लोगों ने बाबा का संदेश प्राप्त किया। तो इसीलिए मैंने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सदा ही कहते हैं कि एक ही ऐसी संस्था है जो सारे विश्व में पहुंचे हुए हैं बहुत थोड़े समय में। तो कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है ये ओम शांति वालों का, ये बढ़ती जा रही है, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, 140 देश तक पहुंच गए हैं, और भले कोई भी धर्म के होंगे, वहां हमारे दुबई में ही इतनी अच्छी है सेंटर्स, तो क्या ऐसी चीज है जो दूसरों में नहीं है? धर्म तो बहुत है। तो क्या जवाब दे रहे? हम तो सब अपना घर गृहस्थ में रहते हुए अभ्यास करने वाले हैं, ऐसी क्या है जो ये संस्था सारे विश्व में बढ़ता जा रहा है? पहला, अभी अभी
अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
बता रहा था थोड़े दिन पहले कुछ धर्म के, जिनको गुरु कहो या फादर कहो, ऐसे आए थे एक ग्रुप में। बिशप्स कहते थे उनको, बड़े होते हैं जो चर्च के जो मुख्य होते हैं, ऐसे अनेक चर्च के बड़े होते हैं जिसको बिशप कहते हैं। तो ये संस्था कैसे बढ़ रहा है, ये सारा विश्व संस्था बन गया है। आज प्राइम मिनिस्टर भी इसकी महिमा करते हैं, राष्ट्रपति जी भी महिमा करते हैं, तो ऐसी क्या बात है? तो मैंने इनको बताया कि भाई हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, सारी दुनिया सोई हुई होती है, पर हम बाबा के बच्चे जो है तो 4 बजे हर रोज सुबह उठते हैं। ये मैंने सही कहा जो वो हाथ उठाए? देखो देखो, हम सब दूसरे तो भाई हम लोग ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, करते हैं, हाथ उठाए। देखो, तो उन्होंने कहा हम भी करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रह्मचर्य में पालन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पर आपके फॉलोअर्स का क्या हाल है? तो कहा वो तो नहीं है, पर हम बाबा के बच्चे हरेक दोनों बातों का, सुबह उठना और ब्रह्मचर्य की पालना। बाकी तीसरी बात मैं इसीलिए नहीं बोला उनको, वो लोग नहीं कर पाएंगे। वो कौन सा है? खान पान का। जो बाबा के बच्चे जो इतना शुद्ध भोजन खाते हैं तो वो कहाँ खाते हैं? तो इसीलिए मैंने वो बात नहीं बोलने गया। किसी को फेल करने में आनंद थोड़ी आता है। तो जब इन्होंने कहा हाँ हम सुबह उठते हैं, सचमुच उठते हैं सुबह वो लोग, और ब्रह्मचर्य का भी पालना करते हैं, पर भोजन का नहीं। तो इसी प्रकार आज हम बच्चे, हमारा जो आने वाली दुनिया के लिए, जिस दुनिया में हम आत्माएं आने वाले हैं, वहां के लिए हम अपने जमा अभी कर रहे हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ, कैसे कर रहे हैं आप? तो सभी पूछते हैं, तो आपकी ये संस्था कैसे चलता है, आपको पैसा कहां से आता है? जैसे आजकल वो जो एक कहते हैं ना, गवर्नमेंट चेक करते हैं कि भाई इन सबको पैसा कहां से आ रहा है ये सब। तो सब जगह में उनको मालूम पड़ रहा है, ये इस देश से आ रहा है, इस देश से आ रहा है, ये सब पकड़ रहे हैं उनको। पर हम बाबा के बच्चे, जहां भी सेंटर्स चल रही है तो वहां बच्चों के अलावा और कहीं से पैसा नहीं आता है। जो ये यही है जो बाबा के बच्चे, उनके कारण ये आश्रम चल रहा है, सेंटर चल रहा है। मैंने इनको स्पष्ट बताया, हमारे बाबा के बच्चे। अरे इसमें तो कोई अदानी और अंबानी और ये वगैरह तो कोई है नहीं, ये तो सब सामान्य साधारण बच्चे हैं, ये कहां से पैसे देंगे? ये अपना परिवार चलाएंगे या पैसा देंगे? तो हमने कहा कि हमारे पास बाबा को देने के लिए पैसा वो अलग ही है। उन्होंने कहा वो अलग कैसे हैं? तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो हमारे कुछ पैसे, कभी कोई सिनेमा वगैरह देखने में चला जाता था, हम अभी नहीं देखते हैं। हमारे बाबा के बच्चे जो कहे जो सिनेमा नहीं देखते हैं, वो तो हाथ उठाए, देखो ना। तो आजकल क्या सिनेमा थिएटर में सस्ता होता है, तो बच जाता है ना पैसा। हमने कोई खास और जैसे नहीं लाए हैं, जो हम बचाए हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी आदत हो जाता था, यूं यूं करते थे कभी थोड़ा सा, ये सब अभी खत्म हो गया। किसी भी आदत, कोई भी आदत ऐसी थी, कर्मकांड विधि, भाई बर्थडे में भी छोड़ो, डेथ डे में भी करो, दूसरा भी करो, तीसरा भी करो, पता नहीं कितनी प्रकार से हमारे खर्चा हो जाता था, हमको मालूम ही नहीं पड़ता था। पर बचत अभी होता है उसमें थोड़ा सा, बाबा का सेवा में भी करते हैं, सेंटर में भी देते हैं, सब कुछ होता है। तो बाबा के सेंटर्स बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। हम लंदन में गए, वहां भी चर्च हमको दिए, पैलेस हमको दिए। आज भी हमारे मोहिनी बहन न्यूयॉर्क में है, वहां भी जो हमको मेन सेंटर है न्यूयॉर्क में, वो चर्च है, वहां कोई नहीं जाते। पर यहां बाबा के बच्चे अपने जो कर्मकांड के जो भी चीजें थी, पैसे जाता था, वो सब बचा करके उसको हम जमा करते हैं। वो किसी लिए, कोई किसी को देने लिए नहीं, बहन जी को दे दिया, दीदी को दे दिया, ये वो नहीं, आने वाले दुनिया के लिए हम अपना जमा कर रहे हैं। कभी हमारे किसी भाई बहनों को ये ख्याल नहीं आता है कि हमने कुछ दिया, नहीं, हमने जमा किया आने वाले दुनिया के लिए। बाबा ने हम बच्चों को एक बैंक खोल के दिया है, तो उस बैंक द्वारा बाबा का जो एक धर्म की स्थापना की जो कार्य चल रहा है, तो उसी में अकेले में हम नहीं है कि कोई अकेले हम बन जाते हैं, नहीं, परिवार है हमारा और सबके लिए हम अकेले, गुरुजी अकेले हैं, पर हम सब बच्चे हैं बाबा के। तो बाबा हम बच्चों के लिए एक दुनिया ही बना रहा है जिसको सत्य युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। तो उसमें हम बच्चों को बाबा ले जा रहा है, तो इसीलिए हम जमा कर रहे हैं। हमारा जमा वो है जो वेस्ट जाता था, उसको बाबा ने बेस्ट बना दिया। तो हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि किस तरह से हमने किया, हमने कहीं से लेके लोन लेके ये करके नहीं किए, जो बचत है उसमें। मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी का, दादी कहते थे, यहां हम मनमोहिनी देखा होगा आपने, यहां हम बना रहे हैं एकोमोडेशन, 5000 लोग रह सके ऐसा हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो सबको लगा कि इतना बड़ा बनाएंगे तो कितना करोड़ों रुपया लगेगा, तो सुनते ही सबको ये हो गया कि हम क्या देंगे, हमारे पास है क्या जो देने के लिए, जो ये करोड़ों रुपया की बिल्डिंग ही सब बना देंगे। दादी ने अनाउंस किया ये प्रोजेक्ट के लिए रोज 1 रुपया बाबा के बच्चे देंगे। तो कहा कि इतने बच्चे बाबा के, तो 1 रुपया रोज दे तो वो कितना हो जाता है, एक मास में कितना हो जाता है। तो अखबार वाले पत्रकार जो पूछते थे दादी से, वो सब चुप हो गए, अपने हिसाब कर रहे हैं कि भाई 10,000-20,000 बच्चे हो, 50,000 बच्चे हो, 1-1 रुपया दे दे और एक मास में कितना हो। कहते हैं ठीक है दादी जी, ठीक है, सबने बोल दिया। तो इस प्रकार बाबा ने हम सबका बचत कराया और सत्युग के निर्माण का कार्य बाबा का इतना अच्छा, इतना सहज हो गया, जो आप सभी यहां तक आए हैं। मुझे पता है ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, तो और कहीं जाना हो तो नहीं जाएंगे, पर यहां आने के लिए किसी भी तरह से अपने आप को मैनेज करके यहां पहुंच गए हैं, निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं। दूसरी, एक तो है अपने आप करते जाना, पर हरेक का एक परिवार है, दोस्त है, संबंध संपर्क है, तो उनकी भी भाग्य बने वो भी हम बच्चों को मालूम है। अच्छे लोग होते हैं, सब जगह होते हैं, इतने सेंटर्स जो बने हैं तो ऐसे ही नहीं बने हैं, जो आप बच्चों ने, आप सभी ने, जहां जहां जिनका ऐसी संस्कार वाले होते हैं सोसाइटी में, तो उनसे भी भाग्य बनाया और उसमें अपना भी तो कुछ बना होगा या कि नहीं। जिसका आप बनाते हैं भाग्य, तो जो बनाने वाले आप बच्चे हैं, तो क्या हम बच्चों का कुछ नहीं बनेगा। तो हम बच्चों का भी उसमें भाग्य बनता है। तो ये कार्य बाबा ने हमको पहले पहले सिखाया, अपना कैसे बनाना, दूसरों का भी कैसे सहयोग लेना। तो तब जाके आज जो रिट्रीट सेंटर जिसको कहते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स अभी सब जगह बनते जा रहे हैं। तो ये हम बच्चों का प्रयास से। तो अब कुछ ये तो हो गया हमारा कार्य व्यवहार से, अच्छा कर्म कहते हैं उसको। परंतु कुछ और हम अपने रीति से मेहनत कर रहे हैं, वो है हमारे पास भगवान ने हर रोज 24 घंटा देता है हम सबको, सबके पास है। इसके लिए कोई और मेहनत करना या बैंक से आना या सैलरी आए या धंधे से कमाए, नहीं, ये तो ईश्वर ने मुफ्त में दे दिया है 24 घंटा। तो ये 24 घंटे में हम भी रह रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी रह रहे हैं, मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये सब सबको ये 24 घंटा। पर उनके लिए नाम अलग है, वो वीआईपी, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो हमको कोई बोलता नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका सुबह उठते ही शुरू, भाई यहां का जाना है, यहां जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारा दिन का पूरा, रात कब तक होता है, कब घर आता है पता नहीं। भले बाबा हमको कहते हैं तो 6 घंटा तो योगी सो सकते हैं, 6 घंटे में भी चल जाता है, फिर भी 8 घंटा भी आप रेस्ट कर लो, बाकी 16 घंटा है भाई, ये 16 घंटा कहां जाता है और कैसे वो व्यतीत होता है? क्योंकि टाइम को क्या है, बैठे बैठे तो हो जाता है, कोई दो मिले तो टाइम पास हो जाता है, अखबार लिया पास हो जाता है, वीडियो खोलो पास हो जाता है। आजकल तो बाबा एक चीज ऐसी आ गई है जो हाथ में रखा है, यूं बैठा है, उठता ही नहीं है, इसके सामने जाओ आओ 10 बार बिल्कुल नहीं, वो लगा रहता है। वो क्या इसको मिल रहा है उससे वो नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई उसको चार्ज करने के लिए भी पैसा लगता है, इंटरनेट के लिए भी पैसा लगता है, डाटा भी पैसा लगता है, उसको फिर यूज करते हैं तो फिर नया लेना पड़ता है और टाइम चला जाता है। तो आजकल जोक करते हैं, छोटा छोटा फिल्म बनाते हैं कि भाई देखो ये बच्चा लड़ रहा है, चुप्पी नहीं हो रहा है, जब जैसे ही इसको मोबाइल दे दिया चुप हो गया, और चुप ऐसा हुआ जो लगा रहा, तो आगने सामने खड़े है बात नहीं कर रहा है। तो ये भी एक समय का जो भगवान ने, बाबा ने सबको जो दिया है, जो हम ब्राह्मण 4 बजे तो उठते हैं, वो तो है, हम सफल करते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, चाहे प्लेन में हो, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, बाबा की मुरली जरूर पढ़ते हैं। जो कहते हैं कि भाई हम रोज मुरली पढ़ते हैं वो हाथ उठाए, देखो थैंक यू बाबा। तो इसीलिए ये कार्य तो हमको करना ही है, परंतु बाकी समय जो है बाबा जो 8 घंटा छोड़ दो, 16 घंटा है, वो 16 घंटे का क्या हम थोड़ा सा बचा सकते हैं जो बाबा के लिए? तो बात तो है मन का, आप देखेंगे रोड पे इस तरफ से भी जा रहे हैं लोग, इस तरफ से भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हर एक के मन में कोई संकल्प है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है। बिना संकल्प के कुछ नहीं होता, ऐसा ही कोई नहीं चलता है। आजकल वॉकिंग करते हैं वो दूसरी बात है, उसको भी डॉक्टर बोलते हैं इतना टाइम वॉकिंग करो तो शुगर कम हो जाएगा, तबीयत रहेगा करके, वो भी सभी नहीं कर पाते हैं, पर टाइम तो 24 घंटा चला जाता है। तो इसीलिए तो जैसे पैसे जो वेस्ट में जाता था उसको हमने बेस्ट में कर दिया, इसी तरह से वीआईपी वही है जो अपना समय को थोड़ा सा प्लान करके कराने का। तो तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कोई चीज है जो सबसे बेस्ट करने का, समझो समय तो है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है, समय है, क्योंकि समय मन का है। तो इसमें ऐसा क्या करे जो सबसे बेस्ट उसका उपयोग होवे? पहला, बाबा को याद करना, ये सबसे नंबर वन है, बेस्ट है। आप और कुछ भी नहीं करो, बाबा के याद करो तो उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे, इतना टाइम क्या करे, चलो एक घंटा बैठना है तो क्या करे, कैसे करे, किस प्रकार करे? तो एक बात मैं आप सबसे पूछता हूं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में यहां आए, अव्यक्त बाबा के तन में बाबा आए, और आज भी बाबा का वो दिखाएंगे आपको, तो जिसमें आपको भी लगेगा बाबा हमारे पास आया, अभी बाबा दृष्टि दे रहा है आपको, सचमुच सब अनुभव होगा। तो क्या बाबा यहां ही है जो हम सबके साथ ही है, या ये कहते हैं बाबा हमारे साथ भी है, वो हाथ उठाए, देखो बाबा, बाबा सबके साथ है। जब बाबा सबके साथ है तो बाबा को याद कैसे करे फिर, जब साथ है? तो साथ है तो आपके साथ समझो दुनिया का कोई बड़ा आदमी है, तो आप दूसरे को क्या बोलते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, उनका परिचय देते हैं ना। तो जब स्वयं भगवान हम बच्चों को मिला है, जब दुनिया को हम बोलते हैं ना, वो विश्वास नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम भी दुनिया जैसा ही समझो है, तो कहेंगे ये तो हमारे जैसा ही है, ये इसको भगवान कहां से मिला। तो मुझे वो सदा ही याद आता है, मीरा जा रही थी तो उसका पांव लगा एक को, तो उसने कहा अंधे तो तुमको दिखता नहीं है, वो नमाज पढ़ रहा था। तो मीरा ने कहा माफ करना, पर अंदर ही अंदर सोच रही थी मैं तो मेरा कृष्ण की याद में थी तो इसीलिए मैं देख नहीं पाया, तो इसकी नमाज से तो मेरा अच्छा है, ऐसा उसने बोला। तो हम बच्चों को भी बाबा हमारे साथ हो वो दिखना तो चाहिए ना। बाबा ने कहा दो ही रास्ता है बाबा की प्रत्यक्षता का, चेहरा और चलन। तो इसीलिए जो आप इस बार जब जाए तो मुझे विश्वास है आप बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे। क्योंकि आपकी प्रत्यक्षता तो बाबा ने कर दिया है। ये तो बैज वाले है भाई, ये तो ओम शांति वाले, ये तो सफेद कपड़े वाले, हमारा परिचय तो सारा गांव में मालूम हो गया है, सबको देखते ही बोल देंगे बाबा ने हमारी प्रत्यक्षता तो कर दिया। तो पर बाबा की प्रत्यक्षता जो करना चाहिए तो वो है हमारी चेहरा और चलन। तो चेहरा कौन सी है? मन में मेरा बाब साथ है, क्योंकि बाबा भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, वो परमात्मा है, मैं तो बच्चा हूं बाबा का, भगवान का बच्चा हूं। तो बाबा से हम बात क्या करें? तो बाबा के पास दो चीज है, ज्ञान तो दे देता है बिना पूछे बिना मांगे, मुरली मिल जाती है, परंतु जो हम बाबा से पर्सनली लेने की जो है दो चीज, एक है गुण, दूसरा है शक्ति। तो ये जो है गुण ईश्वर के साथ या बाबा के पास जो गुण है, वो इस धरती में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिनके अंदर जो ईश्वर के सारे गुण हो, नहीं। शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर तो कहीं किसी में हो तो दिखाए, वो बाबा के पास है। तो वो बाबा हमारे साथ है, तो उसको हम जितना ले सके बाबा के साथ वही बात करनी है, उसी स्थिति में रहना है। मेरा बाबा शांति का सागर है तो मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो अपने आप को बाबा के साथ, बाबा का गुण। और कुछ ऐसा भी होता है जो शक्तियां बाबा से लेते हैं, हम बहुत शक्तियां हैं, एक एक शक्तियां हम बाबा से लेते हैं, पर लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, दो शक्तियां हैं वो बाबा के पास नहीं होता है, पर हमको वो लेना जरूरी है। उस दो शक्ति के बिना कोई और शक्ति भी वो हमारे अंदर बैठता नहीं है, पर वो भगवान नहीं देता, वो हमको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन सी शक्ति है? दो, एक है सहन शक्ति। भगवान आपको कभी भी दुख नहीं देता है, तो फिर कौन देता है? ये जो साथ में रहते हैं ना, कोई एक दो के लिए कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा, आपसे मांग के बस कल दे देता हूं, आप ये दे दीजिए, कल क्या 10 दिन भी हुआ नहीं दे रहा है, हैरान कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इस दुनिया में चाहे सरकार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, इन सब से ही ये शक्ति आती है, सहन शक्ति, बाकी नहीं। हमारे जो खास जो होते हैं ना, उनसे ही हमको ये सहन शक्ति मिलता है, पर तब मिलता है जब हम खुशी खुशी से इसको लेते हैं, कोई नहीं लेता। कोई किसी को कोई तंग करे, कुछ भी बोल दे, वो सुन ले, बहुत कम। पर हम बाबा के बच्चे सब कुछ देखते हुए सुनते हुए, हमारा खास लोग है वो हमको एक शक्ति देते हैं। सिर्फ बच्चे तंग करने से मां को शक्ति आ जाती है? नहीं, वो तो है, सहन करती है मां, परंतु कोई भी आस पास संबंधी सब, हमारे ऑफिस में ऐसे है, ये है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम करेंगे, प्रकृति करेगा, उसको भी सहन करते हैं। तो सहन करने से सहन शक्ति आता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो जिसको सहन शक्ति आती है तो वो तो देवता बन जाता है। तो कहते हैं ना, तो दो पत्थर पे कर रहे थे काम, तो एक ने कहा बाबा मुझे नहीं मारो, तुम मुझे जैसा है मैं मुझे ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो उसने छोड़ दिया उसको, और दूसरे ने उसी एक पत्थर को कुटता रहा, वो मूर्ति बनी, तो अंदर जाके लोग पूजा करने लग गए। तो वो सहन किया, तो वो वही पूछा उन्होंने जो दूसरा पत्थर ने, कि भाई उसकी पूजा हो रही है, सारे लोग उसी को देखने जा रहे हैं, मेरे ऊपर तो पांव रख के जा रहे हैं, तो क्योंकि तुमने सहन नहीं किया। तो सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, वो उस शक्ति से ही हम सबको दूसरी सभी शक्ति इसके साथ आता है। तो आप कहेंगे दो बोला था आपने, एक ही तो बोला, तो दूसरा भी बोल दूं, मेरा टाइम तो हो गया। दूसरी कौन सी है? एक बाबा ने हम बच्चों को विशेष, जो यहां बैठे हैं हम सब बच्चों के लिए बाबा ने ये बात कही है, बच्चे कई बार आपको दिखता है अवगुण, कभी कभी दिखता है, पर उसको आप ये नहीं करो कि भाई जैसे आपके ऊपर ही सारा जवाबदारी है कि सारी दुनिया को सुधारने का, ऐसा काम नहीं करना कि अवगुण कभी भी किसी को नहीं सुनाना। हमारे में क्लास कराते थे हम बट्टी के रूप में, तो उसमें एक एक को कहते थे कि इनमें क्या गुण है बताओ, इनमें क्या गुण है बताओ, ऐसा। तो इसी प्रकार बाबा ने हमको दूसरों के अवगुणों को अंदर समा लेना, इसको कहते हैं कि समाने की शक्ति। मालूम है इनमें ये है, ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो ये सब कुछ है, पर हम कभी भी उस पे ना एक्सप्रेस करेंगे, दूसरों को बताएंगे। तो आजकल ऐसे करते हैं भाई, ये बताना नहीं। तो हर एक को तो दो चार तो अच्छे दोस्त होते हैं, देख मैं ये बोल रहा हूं तुमको, पर किसी को बताना नहीं, और शाम तक सबको मालूम हो गया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, आठ शक्तियों में समाने की शक्ति। कुछ भी है आपको ठीक नहीं लग रहा है, वो उसको समा लेना, न कि उसको बोल देना या दूसरे को भी बता देना, वो काम नहीं करना है। तो इस प्रकार हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाने की ये पुरुषार्थ हम सबको करना है। ओम शांति।
बन के